Shakti. Good morning. आज बाबा ने बच्चों को, बच्चों का फर्ज क्या है वो बताया है कि बच्चे आपको सुख शांति का रास्ता बताना है। और आज बाबा ने ये भी बताई है कि बच्चे आपको शांति की बख्शीश देनी है। वैसे तो बख्शीश एक फारसी शब्द है जो दान पुण्य करते हैं या कुछ ऐसे लौकिक के हिसाब से जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो टिप देते हैं उसको बख्शीश कहते हैं। लेकिन बख्शीश का दूसरा अर्थ भी रिश्वत है। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं शांति का बख्शीश देना है। लोग भक्ति मार्ग में आशीर्वाद मांगते हैं और बाबा कह रहे हैं उनको रास्ता बताओ कि अपने सुख शांति का वर्षा कैसे लेवे। और साथ साथ में बाबा ने इसके कनेक्शन में एक राज बताया है आज। और मैं समझती हूं इस राज को समझने से शांति की शक्ति हमारी जमा होती है। और वो राज ये है कि जो ड्रामा का सीन जिस समय चलता है उसी समय चलेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ईश्वर का आने का भी समय फिक्स्ड है, एक सेकंड पहले नहीं आ सकता है। तो हर एक चीज की घड़ी फिक्स है, हर एक की परिवर्तन की घड़ी फिक्स्ड है, तो चिंता करने की क्या दरकार है। हमको याद है जब हम दादी जानकी जी के साथ आपस में चिट चैट करते थे तो दादी इस बात का बहुत ध्यान खींचवाती थी कि इतना अटेंशन रखो कि कर्म करते हुए भी शांति की शक्ति जमा हो। अभी आप सोचो, ड्रामा का राज समझेंगे, साक्षी होकर के एक एक सीन को देखेंगे, अपनी पवित्र स्मृति में रहेंगे और ड्रामा के सीन को चलने दो, अपने टाइम पे सब कुछ होगा, तब शांति की शक्ति जमा होती है। और साथ में शांति के साथ साथ बाबा ने आज सहनशीलता का गुण भी उठाया है कि बच्चे ये अपवित्र दुनिया है, विकार पर जीत पाना है, धैर्यता चाहिए, सहनशीलता चाहिए। तो आज बड़ी अच्छी वाणी है बाबा की। तो 11 अक्टूबर 2025 की वाणी है और बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। तुम्हारा फर्ज है सबको स्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश माना इनाम दो। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है, बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। ड्रामा की एक्यूरेट आयु है और बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए, अब वह भी कहां से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिसे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है और होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं। पहली बात क्या आती है, पवित्रता आती है या शांति आती है? पवित्रता आती है। वही पवित्र स्मृति में आत्मा, परमात्मा की संतान, अनादि पवित्रता, अनादि शांति लेके आती है, यही मुख्य पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपनी भी पुरुषार्थ करते, अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए, बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। बच्चों का फर्ज है सभी को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है परंतु निश्चय न होने कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वार मिलता है, मिल रहा है, माना वर मिल रहा है, माना वरदान देते हैं ना। आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं, सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो इनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, मां बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे। कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। अनादि शांति तब प्राप्त होगी जब आत्मा का रियलाइजेशन होता है। मनुष्य मनुष्य को देते हैं।
ओम शांति
शांति
ओम शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
कहते हैं वो हुआ अल्प काल के लिए, मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थाई। यहां तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फेराते रहते हैं। वह सब है अल्प काल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है, तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहां 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से ही होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सब का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है, आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के दो भाग है, एक नई और एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बना सके सॉरी झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको ही पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता है। अंदाज बता देते हैं, तूफान आया झाड़ गिरा आयु पूरी हो गई। मनुष्य का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उसी समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। एक सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। अभी बाबा एक दूसरा राज बता रहे हैं, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते। शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्य का जन्म दिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो और फिर दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। तो हमारी पढ़ाई है घर जाने के लिए और आगे का वाली दुनिया में फ्यूचर के लिए जाने के लिए। तो पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है और सत्युग की लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता तो नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है? अगर 84,00,000 जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानते न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पड़ रहे हो, अंदर में भासना आती है। कौन सी भासना आती है? हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। सबसे बड़ा भाग्य ये है कि इस समय जो और कोई जन्म में नहीं मिलता है कि हम सम्मुख ईश्वर के साथ सामने प्रैक्टिकल में बैठ के पढ़ रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम्ही कल्प कल्प बाद से वर्ष तुम्ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। तो इसको क्या कहेंगे? यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयां लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। और क्या जीता? किसके ऊपर जीता? छोटा सा टुकड़ा के ऊपर जीत लिया। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होती जाती है। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं ना, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो, बहुत अच्छी बात पापा ने बताई, तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रही है, अमर बना रही है, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुराने को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। निश्चय पक्का हो जाता है। और फिर इसमें कौन सी और बात चाहिए? दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है, इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, सबसे उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना, तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं, प्रारब्ध मिलती है। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी, इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानती हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं, भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। फिर बाबा पूछते हैं, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं और मैं कहता हूं बच्चे पतित बना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? एक भी बाबा आज प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और फिर तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई, बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ, फौरन अपना कॉन्शियंस विवेक को हल्का करो, फौरन बता दो। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? तो फिर बाबा कहते हैं मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो न सके, मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत और पुरुषार्थ तो अपनी है, पहले सच्चाई साफ दिल रख करके जो हूं जैसा हूं बाप के सामने स्पष्ट रहना है ना, तब तो शक्ति मिलती है। मेहनत कर पावन से फिर पतित, पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारी ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएंगी, लग जाएंगी कि हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहां तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। उनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। यह समझने की बातें हैं ना, सत गुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तो सबको कहते हैं बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा, ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से स्मृति रहती है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाई धारण होती है, फिर उसके बाद ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अवल दिन रचता है फिर साक्षात्कार हो जाता है, तुम जानते हो बरोबर। हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, आज छोटी मुरली है क्योंकि अभी जल्दी पूरा करना है। तो बाबा बोलते हैं तुम जानते हो बरोबर, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, सार में यही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है, बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो चुप रहेंगे, श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है, वरदान, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा, हलचल में भी अचल अडोल भव, समय प्रमाण, वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहती है। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। और आज का व्यक्तिशारा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। आप सभी को पता है कि जो कल आपको प्रोग्राम सुनाया गया उस अनुसार आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब के पार्थिव देह को यहाँ पांडव भवन लाने वाले हैं और अभी उनके पार्थिव देह को शायद म्यूजियम पहुंच चुके होंगे। थोड़ी देर वहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, उसके तुरंत बाद पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में आज रखा जाएगा। तो सभी ध्यान दे, जो पांडव भवन में आंगन में सुन रहे हैं वो अभी तुरंत ही जाकर के आप लोग क्लास के बाद अपना नाश्ता ग्रहण कर ले। लगभग 8 बजे तक अपना नाश्ता पूरा कर लेना है सभी को, क्योंकि किसी भी समय तुरंत उनकी बॉडी को यहाँ लाएंगे हिस्ट्री हॉल में। तो इस बात का सभी जो नीचे भी सुन रहे हैं ध्यान दे, अभी तुरंत ही आप लोग क्लास के तुरंत बाद अपना नाश्ता पूरा कर ले जाकर के किचन में। फिर एक बार समेट लेंगे तो फिर बाद में हो नहीं पाएगा। तो लगभग म्यूजियम तक पहुंच चुके हैं और बाकी दिन भर में आप लोग कभी भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कल सुबह तक उनके पार्थिव शरीर को पांडव हॉल में हिस्ट्री हॉल में रखा जाएगा। लेकिन जिसको भी श्रद्धांजलि डालनी है आज शाम तक रात तक भी डाल ले, क्योंकि कल सुबह फिर उनको तैयार करके चार धाम की यात्रा करा करके और फिर ज्ञान सरोवर ग्लोबल हॉस्पिटल फिर नीचे आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे और क्लास संपन्न करते हैं। ओम शांति।